Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas ey logo. İttaku rabbakum. Apne Rab se dar jao. Surat ke shuru mein Allah subhanahu taala kya keh rahe hai? İttaku rabbakum. Abhi sirf is lafz pe baat karne se pehle hum Surat Al Imran ki aakhri ayat ko dekhenge. Apne page ko piche paltiye. سب سے آخری حکم سورة آل عمران کا کیا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وہاں بھی آخر میں تقویٰ کی بات تھی اس سورت کے آغاز میں بھی تقویٰ کی بات ہے اور یاد رکھیں یہی ہے خلاصہ ساری تعلیم کا کہ اگر ہمارے اندر اس سب پڑھنے پڑھانے سے اللہ کا تقویٰ اور اس کی معرفت نہیں آ رہی تو پھر ہم پورے نمبر لے کر بھی فیل ہیں ناکام ہیں لوگ ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھنے لگ جائیں لیکن ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور کیا کیا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے پھیلا دیئے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور صلہ رحمی کا یعنی رشتوں کا لحاظ رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ نظر رکھنے والا ہے نگران ہے یہ ہے وہ آیت جو سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دکھتا ہے کہ آپ اس آیت کو نکاح کے خطبے کے موقع پہ پڑھتے تھے یعنی جب کسی کا نکاح ہوتا تو آپ اس وقت یہ آیت پڑھتے تھے اور یا ایوہا جو ہے یہ گرامر کی روشنی میں حرف ندا ہے پکارنا جیسے انگلیش میں آپ کہتے ہیں او مین او سسٹر او برادر او او کا لفظ ہے جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں اور جو پکارے وہ منادی ہوگا کہیں پڑھا آپ نے ریسنٹلی پچھلے سبق میں پڑھا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فَآمَنَّا بِهِ ٹھیک ہے تو پکارنے والے کو کہتے ہیں یا ایوہا اے لوگو الناس لوگ پہلی بات تو دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ نے انسانیت کو خطاب کیا ہے اور سورۃ نساء اس کو نساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور سورۃ طلاق آئے گی آگے جا کر 28 پارے میں 28 پارے میں اس کو نساء الصغریٰ بھی کہتے ہیں یعنی یہ بڑی سورۃ نساء ہے تو وہ چھوٹی سورۃ نساء ہے جیسے کہ انٹروڈکشن میں بات ہوئی کہ سورت نساء میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا عدل دکھتا ہے اسی لیے شاید یہ سورت جو تھی یا ایھا الناس سے شروع ہوئی اور جب بھی کوئی آیت یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے تو یہ حجت بھی ہوتی ہے دوسروں پہ کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے اب اس آیت میں دو دفعہ لفظ اتقوا آیا شروع میں دیکھیے اتقوا ربکم اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تو تقویٰ لفظ کو دیکھ لیجئے ہمارے ہاں تقویٰ کا بہت ہی زیادہ ٹھیٹھ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو اپنے رب سے خوف کھاؤ ڈر جاؤ اس کا ترجمہ درست نہیں ہے حالانکہ تقویٰ کا جو لفظ ہے نا اس میں بچنے کا معنی آتا ہے اتقوا ربکم کہہ کر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا گیا آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم کس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہمیں پہلے ہی نہیں اچھا لگتا اگر وہ آپ کو کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہو جاؤ پھر تم روٹھے ہم جھوٹے لیکن جن سے پیار ہوتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ کسی بھی موقع پہ ایسی کوئی بات کریں تو ہماری جان پہ پڑ جاتی ہے یہاں تھوڑا سا سمجھیے گا اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے قرآن پاک میں اور خاص طور پہ سورۃ نساء میں تین قسم کے گروہوں سے خطاب ہے یہاں تو یا ایھا الناس ہے نا سارے لوگ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے گا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے ए लोगों जो ईमान लायो, या अय्युहल्लज़ीना कफरू भी है, बहुत कम है लेकिन है। लेकिन पूरे कुरान में कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना नाफ़कू नहीं है, ए लोगो जो निफाक पे हो, मुनाफिको, बल्कि उनकी जगह भी या युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। पीछे हमने सूरत बकरा और सूरत आल इमरान में बहुत दफ़ा बात की कि उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम सूरत निसा को देखें ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने तीन गिरोहों से खिताब किया है। सबसे पहला खिताब जो है इस सूरत में वो मुनाफिकीन से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ चुके थे, अब असूलन तो उन सब लोगों को आपके आगे हैंड्स अप कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी भी दिल में खोट था। और ईमान दिल में आते आते ही आता है, एकदम नहीं आता। इवन कलमा भी बंदा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है बंदा, लेकिन ईमान की हलावत दिल में वक्त के साथ साथ आती है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को भी ईमान वाले ही कहा है, ये है अल्लाह का रहम। क्योंकि अगर वो आमनू की जगह नाफकूस के साथ लिख दिया जाता तो बात बड़ी बदल जाती थी। दूसरा, इस सूरत में खिताब है सच्चे मुखलिस मोमिनों से, उनके लिए भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा, ईमान वाले हो। हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन से हैं? टेक्स्ट से पता चलता है। बाज़ औक़ात सरासर तनकीदी जुमला होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत 38 में भी आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहि सअक़लतुम इलल अर्ज़। ए ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम तो ज़मीन में ही धंसे जाते हो। अब आप बताइए, क्या ये खिताब सच्चे मोमिनों से है? नहीं है ना। तो सरासर खिताब मुनाफिकों से था, लेकिन अल्लाह सुबहान ताला ऐसा नहीं करते कि उनको मुखातिब करें। अब इस सूरत के शुरू में या युहन नास कह दिया गया, ठीक है। अब इस सूरत में जब अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को पुकारा, तो ये हम खुद चेक करेंगे कि कहाँ किसका जिक्र है। अल्लाह सुबहान ताला चाहते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले लोग अल्लाह के बंदे बन के रहें, इसीलिए कहा इत्तकू रब्बकुम। और यहाँ देख लीजिए, ना नमाज का तस्कर है, ना रोज़े का, ना हज का, ये मामलात वाला तकवा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत खुतबा निकाह में पढ़ते तो गोया के रिश्तों को निभाने में सबसे बुनियादी जो फोर्स है ना, वो इत्तकू रब्बकुम है। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से निभा ही नहीं सकती अगर अल्लाह का तकवा ना हो। सास बहू से और बहू सास से खुश रह ही नहीं सकती अगर अल्लाह का तकवा ना हो। इसी असूल को हर मामले पर रख लीजिए कि अल्लाह की ज़ात जो इंसान को इतना कुछ देती है, वो कहती है कि देखो, तुम हकीकत में इस दुनिया में मेरे डर के साथ जियोगे तो इंसानों के भी हकूक अदा करोगे, और तुम अपने रब से बेनियाज रह भी कैसे सकते हो। रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुमको पैदा किया। यहाँ आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला की सिफात में से एक सिफत खलक़कुम आया, तख्लीक, खालिक है ना, हुवा खालिकु कुल्ली शैइन। अगर वो तुम्हें पैदा ना करता तो तुम क्या होते, किधर होते? आज बहुत अकड़ते हो, बहुत बड़े बनते हो, तुम्हें अपने रब की बात सुनने का भी वक्त नहीं, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं, तुम उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते, तुम सबसे डरते हो, अपने रब की नाराज़गी से नहीं डरते, तुम्हें क्या हो गया? वो रब जिसने ना सिर्फ ये कि तुमको पैदा किया, बल्कि अल्लज़ी खलक़कुम, खलक तख्लीक के बाद उसने तुमको दुनिया में जीने के सारे असबाब मुहैया किए, और तुम्हें रिश्तों की खूबसूरत चाशनी दी। वह खलक मिन हा ज़ौजहा, ये जो मिन नफ्स वाहिद है ना, ये कौन सा नफ्स था? आदम अलैहिस्सलाम। डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गैब का मामला है, ना मैं थी उस वक़्त ना आप थे, हम में से कोई जितना मर्जी जतन कर ले ये नहीं देख सकता कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया था। सही रिवायत से मिलता है कि अल्लाह ताला ने आदम का एक पुतला बना दिया और उसको थोड़े दिन छोड़ दिया, खूब ठिकरी की तरह वो मट्टी गुंदी भी जो थी वो बजने लगी, अंदर से खाली था। इस दौरान एक शैतान अंदर जाके इधर से उधर आके नाक के और मुंह के रास्ते देखता रहा कि इंसान अंदर से खाली है, उसके दिल से इंसान का डर तो उसी दिन निकल गया होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी थी। इसका तذکرہ हम सूरह अल अराफ में पढ़ेंगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया था। कितना बड़ा ऑनर है। तीन चीज़ों के बारे में आता है रिवायात में कि जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई थी, उसमें एक चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर उसके बाद क्या किया, वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उनसे उसका जोड़ा बनाया। मिन्हा से क्या मुराद है, उसी से नफ्स वाहिदा। मिन हू होता तो मुज़क्कर था, हा मुअन्नस के लिए आता है, तो हा इधर क्यों आया है, नफ्स के लिए। ऊपर जो लफ्ज़ है ना नफ्स, अरबी जबान में लफ्ज़ नफ्स जो है ये मुअन्नस होता है, इसीलिए आगे आप देख रहे हैं कि वाहिद की जगह वाहिदतुन है। यहाँ इशारा हजरत हवा की तरफ है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उनको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। कैसे किया, क्या हुआ, इसको क्या सुनने और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आज जो बच्चा दुनिया में आता है, क्या वो पॉसिबल वे दिखता है। कुछ लोगों ने अल्लाह की कुदरत पे शक किया और शुरू हो गए, कैसे हुआ, पसली से कैसे निकली होगी। तो ये बताइए कि बच्चा आज दुनिया में कैसे आ जाता है। नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाली ज़ात सब कुछ कर सकती है। लिहाजा ऐसी बातों पे गौर व फिक्र की बजाय ये देखना चाहिए कि क्यों किया। थोड़ा सा यहाँ से आप शौहर और बीवी के रिश्ते का हुस्न देखिए। दुनिया में इंसान को भेजने के बाद सबसे पहला जो रिश्ता बना वो माँ बेटे का नहीं था, भाई बहन का नहीं था, बल्कि वो शौहर और बीवी का था। इससे क्या पता चलता है कि ये रिश्ता लाजिम और मलजूम है, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को एक दूसरे की ज़रूरत बनाया। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा लोग रिश्तों के बारे में बहस करते हैं, आपको अम्मी से ज़्यादा प्यार है या मुझसे, और बाज़ माएँ कहती हैं तुम्हें बीवी जब से मिल गई तुम मुझे भूल गए। हर माँ जब अपने बच्चे की शादी करती है ना, और ख़ास तौर पर वो माँ जिसका एक ही बेटा हो, तो उसको दिल के अंदर इस बात को बांध लेना चाहिए कि फितरी तौर पर बीवी से शौहर को मोहब्बत, यानी आपका बेटा, यानी माँ की मोहब्बत कम नहीं होगी लेकिन बीवी की जगह बनेगी। और अगर नहीं बनेगी तो आप खुश कैसे रहेंगी। क्या कोई माँ अपने बेटे का रोता हुआ मुँह देख सकती है। सुबह देखे तो बेटा दुखी दुखा उतर रहा है और लड़ रहे हैं, और वो उधर मुँह सजाए है, वो उधर है। फर्क क्या है कि जब तकवा नहीं होता तो इंसान एक तरफ झुकने लगता है। तो लिहाजा इंसान को हर रिश्ते को तस्लीम करना चाहिए। अब आप कहेंगे चले ठीक है, हम अपने शौहरों को पकड़ते हैं और ले जाते हैं, अलग कर देते हैं, हमें तो उनकी माँ से और बहनों से मिलने की उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो पहली बात है कि आपकी इजाज़त की तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ शुरू में रिश्तों के निभाव के लिए तकवा की शर्त लगाई, इसलिए कि देखो जब शादियाँ ब्याह होते हैं तो बच्ची और बच्चे को जो सबक पढ़ा सको वो ये है कि अल्लाह से डरो। और यकीन कीजिए अल्लाह से डरे बगैर हक दिया ही नहीं जा सकता। बस दफ़ा तबीयतों में बहुत फ़र्क होता है, ज़ुबान फ़र्क होती है, कल्चर फ़र्क होता है। लड़कियां दूसरे मुल्कों से एक दूसरे मुल्क पे आ जाती हैं, तर्ज़ ज़िंदगी फ़र्क होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो मोहब्बत डालती है। इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोगों का एक छत के नीचे रहना और फिर खुश भी रहना, ये सिर्फ अल्लाह की शान है। सूरत रोम में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी, व मिन आयात ही, अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानी है, इट्स साइन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। जैसे पिछले सबक में आपने इन्ना फी खल्क़ समावाती वल अर्द की बात पढ़ी है, कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने शौहर और बीवी का रिश्ता बनाया, और वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मवद्दत और रहमत पैदा की है। तो शौहर बीवी को खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको खुश रहने दें। बस दफ़ा कल्चरली जब शौहर बीवी की आपस में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो दूसरे लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे शादी के मौके पे जब आप अपनी बेटी को भेजते हैं ससुराल में, तो उसको ये बात कहकर भेजिए कि तकू रब्बा को, अपने रब से डरो। और यहाँ रब की रबूबियत भी बड़ी बात है। बस जब हम इंसानी रिश्तों में पढ़कर उनको अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं, लेकिन असल ज़रूरत अल्लाह की है। और यहाँ ये भी बता दिया इस तकवा के लफ्ज में कि अब इस ताल्लुक की बुनियाद पे हराम हलाल में नहीं पड़ जाना। शोहर बीवी के ताल्लुक में भी इत्तकु रब्बा को। इसके बरक्स आज जो हमारे कल्चर में ट्रेनिंग होती है या गानों और टप्पों की सूरत में लड़कियों को पैगाम दिए जाते हैं, क्या उसमें तकवा की बातें अमूमन झलकती हैं? सास को क्या कहा जाता है? गले की फांस। और नंद कौन है? गली का गंद। एक लम्हे के लिए सोचें, आप लें अपने ऊपर, आप किसी की नंद है और आपका दूसरा नाम हो गली का गंद, कैसी लगती हैं आप? कभी हम कम ही सोचते हैं कि हम सिर्फ बोल खूबसूरत करने के लिए, ट्यून चलाने के लिए हम बच्चियों को पैगाम क्या देते हैं? अब जिस लड़की को शादी के गानों में ये मैसेजेस दिए गए होंगे, सच बताइए क्या वो खुले दिल और खूबसूरत दिल के साथ ससुराल में कदम रखेगी? उसको तो पहले ही शक पड़ गया कि इस घर में एक बड़ी खौफनाक किस्म की औरत रहती है जिसको सास कहते हैं, और बड़ी ही होनहार किस्म की दो तीन बहनें हैं जिनको नंदे कहते हैं। और फिर होता क्या कि चंद दिन जो चौंक के होते हैं, जिसमें दूसरे रिश्तेदार अभी सर पे सवार होते हैं, वो दिन तो अच्छे हुए, और उसके बाद फिर क्या होता है? बातें शुरू हो जाती हैं, निभा नहीं होता, उधर से बातें, आपकी अम्मी ने मुझे ये कहा, अम्मी साहबा जो है वो अलग गुस्से में है, तेरी बेगम ने मुझे ये कहा। सिर्फ एक लफ्ज़, आप में से जो भी, और मेरा ख्याल है हम में से हर एक किसी न किसी रिश्ते से तो बंधा ही हुआ है, आज एक छोटी सी एक्टिविटी करें, मैं नहीं कहती, आपका दिल चाहे तो आप करें। इत्तकु रब्बकुम, इसको अपना स्लोगन बना लें। आप अपने घर में जहां जहां आपके इंसानों के साथ इंटरेक्शन है ना, वहां लिख के रख लें कि मैंने अल्लाह से डर के आपसे ताल्लुक निभाना है। अल्लाह का खौफ कि अल्लाह ना नाराज हो। देखिए किसने दिए ये शौहर, कोई दे सकता था? किसने दी ये बीवियां, किसने दी ये सास? और सास ना होती तो उसका बेटा कहाँ से आता, और आज हमारे पास जो कुछ है वो फिर कहाँ से आता? कभी आप सोचे अपने ऊपर लें तो फिर तो बात बड़ी जल्दी समझ आती है कि जिस बच्चे को आप 1 साल से, बल्कि पैदा होने से लेकर आज तक पाल रही हैं, और आप उस बच्चे को नहला रही, धुला रही, रातों को जागती, उसका गंदगी साफ करती, फिर आप उसको स्कूल छोड़ने जाती, लेने जाती, सुबह उठती, कितनी माओ की मशक्कत होती है। अपनी ज़िंदगी तो कुछ साल के लिए ख़त्म ही हो जाती है बच्चों के साथ, और इतना कुछ कर करा के एकदम कोई आए और आपसे इस तरह उसको ले जाए कि साथ ही जाके आपके खिलाफ बातें करना शुरू कर दे। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, दुनियावी लिहाज से ज़्यादा मॉड स्कॉट जिनको आप कहते हैं कि ये बड़े लिबरल लोग हैं, आप कभी अंदर जाके देखें तो उनके दिलों में अपने रिश्तों के लिए ज़्यादा कदूरते हैं, क्योंकि इत्तकु रब्बकुम नहीं है। तो अल्लाह से मोहब्बत, रब का तकवा, रब की नाराज़गी का डर बंदे को सीधा कर देता है। किसी को कोई ना देखे, अपने ऊपर देखे कि मैं कैसी बीवी हूँ, मैं कैसी बहू हूँ, मैं कैसी नंद हूँ, मैं कैसी सास हूँ। ऐसे लगता है कि हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। और आप देखिए कि इसमें जो बात हुई कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें मैंने पैदा किया और साथ ही साथ मैंने तुमको एक जान से बनाकर छोड़ नहीं दिया कि बस अब तुम पैदा हो गए, अब तुम जो मर्जी करो, बल्कि वह खलक मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा, फिर फैला दिए। बस्सा का जो लफ्ज़ है ना, बा सा सा, फैलाने के मानो मत है स्प्रेड आउट होना। हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ में एक बड़ी खूबसूरत दुआ है कि इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कह दीजिए कि मैं शिकवा करता हूँ अपने गम का अल्लाह से। तो बस्सी कहते हैं वो गम जिसको छुपाना चाहें छुप नहीं रहा, बिखर बिखर ही जा रहा है, आंखें नम ही हो रही हैं, इंसान से वो गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फैलाने का मानी क्या है कि कैसे फैलते हैं? आप इस आयत को समझना चाहें तो ज़रा लिखिए, आप अपने आप को लिखिए, कहाँ बैठे मैं इस वक्त, लंदन में, वेमली में, लिखिए शाबाश। आपकी कितनी बहनें हैं उनको लिखिए, भाई बहन वो सब इस वक्त किधर है? फिर उसके बाद उनकी औलादें लिखिए, माँ बाप किधर हैं? ये बताइए कि आप सारे ऐसे ऐसे कैसे बिखर गए? एक वो वक्त नहीं था कि आप अपने पाकिस्तान के किसी शहर या गांव में एक ही छत के नीचे सारे थे? दो बहनें, दो भाई, माँ और बाप, खुशहाल घराना। एक लंदन में आ गया, हो सकता है दूसरा दुबई में हो सकता है तीसरा सऊदीया में हो, चौथा पाकिस्तान में ही हो, ये किसकी शान है? बस मिन हुमा रिजालन कसीरा, ये कैसे फैलाया इसके बारे में रिवायात में आता है, क्योंकि ये बनी इसराइली रिवायात है, इसलिए ला तुसद्दिकु ला तुकज्जिबु, कि आदम और हव्वा के घर में हर दिन सुबह को एक बेटा बेटी पैदा होते और एक शाम को। अब वो कैसे होते थे, वो दिन कितने लंबे थे हमें नहीं पता, लेकिन सुबह वाले बेटे का शाम वाली बेटी और इसी तरह उसका ऑपोजिट से निकाह हो जाता था। जहरा के शुरू में तो ये जायज़ था ना, इसलिए वक्ती तौर पे उस दौर में भाई बहन का निकाह इस सूरत में जायज़ था, और बाद में जब इसकी ज़रूरत ना रही, बस सब मिनहुमा हो गया, फैल गए इंसान, तो अल्लाह ताला ने उस हुक्म को रोक लिया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वलरहाम, और उस अल्लाह से डर जाओ जिसका नाम लेकर एक दूसरे से मांगते हो। ये कौन सा मांगना है? ये वो मांगना है जो एक मर्द अपने सुसर से बेटी मांगता है, उसकी विलायत। आप कहते हैं कि एक मर्द एक औरत से खुद शादी नहीं कर सकता। असल में जो शादी होती है ना, जो बीच में होता है, वो शौहर और लड़की के वली के बीच में होती है। शादी के बाद लड़की आज़ाद है, फिर तो उसकी मर्ज़ी। अब वो नहीं कि हर बात में वो बाप से या भाई से हर बात पूछ के मानेगी, लेकिन शादी के वक्त में सवाल डाला जाता है। आपने सुना, पहले भी लोग कहते थे हमने सवाल डाला हुआ है। और निकाह क्या होता है? मैं तुम्हें अपनी बहन या बेटी इतने हक महज के एवज निकाह में देता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? ऐसी लफ्ज़ होते हैं ना, ये है तसालू नबी वलरहम। वलरहम तो आगे सिर्फ तसालू नबी पर है। आप में से जो सिस्टर्स मैरिड है, ज़रा सोचें, सिर्फ एक बोल, अल्लाह का नाम बीच में आ गया और एक हराम चीज़ हलाल हो गई। कोई लिबरल से लिबरल बाप भी, मॉड से मॉड, स्कॉट से स्कॉट, ये बर्दाश्त करता है कि इस जुमले के बोले बगैर अपनी बेटी दे दे किसी के निकाह में? जिनकी बेटियां बड़ी होती हैं, आप देखा करें, उनकी आंखें पीछे भी लग जाती हैं, चैन ही नहीं आता किसी पल के। वो अकेली भी है तो क्या कर रही हैं, तो घर में है तो किधर है, तो बाहर है तो किधर है। लेकिन सिर्फ एक बोल इंसान को दूसरे के काबिल कर देता है। ये है इस्लाम की खूबसूरती। अल्लाह ताला मर्दों को उस बोल का याद दिलाता है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई मैका ना हो सकता है इसका बाप पीछे से ना आ सके, हो सकता है कि वो गरीब है, मिस्कीन है, लेकिन याद रखो, अल्लज़ी तसालू नबी, तुमने अल्लाह के नाम से इसको हलाल किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत रिवायात है मर्दों के लिए, कि देखो अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, तुमने अल्लाह के नाम पर इनको हलाल किया। और जो मर्द बाद में कहते हैं तू मेरे पाँव की जूती, तुझे तो कोई डर लेता नहीं था, तो शुक्र कर मैं तुझे ले आया हूँ, तो उनको बता दो कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। मैं कहती हूँ सिर्फ सूरत निसा की ये पहली आयत ही अगर मर्दों को समझा दी जाए, तो कभी वो अपनी बीवियों को जर खरीद गुलाम नहीं समझेंगे, और ना औरतें कभी उन पर चढ़ाई करेंगी। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हमें दीन दिया है, बैलेंस दीन है। आगे हम पढ़ेंगे दोनों के हकूक और फराइज भी मुकर्रर कर दिए गए।